आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू भी रहेंगे मौजूद। पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर सरकार ने कहा कहीं भी संकट नहीं। प्रदेश में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य। केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क में की बड़ी कटौती। प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया रामनवमी का पर्व। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में किया गया रामलला का सूर्य तिलक। और पिछले दो दिनों से बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में रुक रुक कर हुई बारिश से फसलों पर भी पड़ा प्रभाव। मुख्यमंत्री ने किसानों को मुआवजा दिलाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे। इस हवाई अड्डे को लगभग 11,200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। यह देश की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में से एक है। एयरपोर्ट उद्घाटन समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट।
पहले चरण में एक रनवे और एक टर्मिनल के साथ एयरपोर्ट का शुभारंभ होगा। एयरपोर्ट की वार्षिक क्षमता लगभग 12 मिलियन यात्रियों को संभालने की होगी। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय किए हैं। पूरे क्षेत्र को कई सुरक्षा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रमुख स्थानों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है। भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्जन किया गया है। प्रशासन की तरफ से समारोह के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह एयरपोर्ट दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों के लिए न केवल नया विकल्प देगा बल्कि आर्थिक विकास को भी गति देगा। विशाल दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग रणवीर प्रसाद ने बताया कि सभी जिलों में मांग के अनुसार पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है और कहीं भी संकट जैसी स्थिति नहीं है। एक रिपोर्ट।
प्रदेश सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों के आधार पर घबराहट में अतिरिक्त पेट्रोल डीजल की खरीदारी ना करें। सरकार ने सोशल मीडिया पर ईंधन की कमी जैसे भ्रामक संदेशों को गलत बताते हुए कहा है कि ऐसी खबरें फैलाने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों की स्थिति पर नजर रखें और कहीं भी आपूर्ति बाधित न होने दें। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। पेट्रोल डीजल को लेकर किसी भी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
केंद्र सरकार ने घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि यह निर्णय पश्चिम एशिया संकट के बीच लिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी सही समय पर नागरिकों के हित में लिया गया निर्णय है जो पश्चिम एशिया संकट के बीच राहत प्रदान करेगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में बड़ी कटौती करने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल में 10 रुपए लीटर की जो कटौती की है और डीजल में जो 10 रुपए लीटर ही लगता था पूरा एक्साइज उसको पूरा जीरो किया है, इसकी जितनी प्रशंसा किया जाए वह कम है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था हमारे लिए देश और देशवासी सर्वोपरि है।
उधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पेट्रोल डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन ATF की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी। श्रीमती सीतारामन ने लॉकडाउन की अफवाहों को निराधार बताया है। सरकार ने बताया है कि देश में एक दशक में यूरिया का घरेलू उत्पादन 230 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 315 लाख मीट्रिक टन हो गया है। कल लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए 2014 से गोरखपुर, सिंधरी, बरौनी, रामागुंडम और पानागढ़ सहित कई स्थानों पर नए उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _JKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 132वीं कड़ी होगी। नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालेंद्र शाह ने कल प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसी महीने हुए आम चुनाव में उनकी पार्टी 2/3 से अधिक सीटें हासिल कर सत्ता में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेंद्र शाह को नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। वासंतिक नवरात्र की पूर्णता और भगवान श्री राम के प्राकट्य उत्सव का पर्व रामनवमी प्रदेश भर में कल श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। अयोध्या में रामनवमी के पावन अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम का सूर्य तिलक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन स्थित अपने कार्यालय से टेलीविजन पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की पूजा अर्चना और सूर्य तिलक के दर्शन किए। अयोध्या में रामनवमी को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे। एक रिपोर्ट।
अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में मनाया गया। दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य की किरणों ने रामलला के ललाट पर तिलक किया। इस दौरान श्री रामलला की आरती उतारी गई। सूर्य तिलक से पहले उनका पंचामृत से अभिषेक कर विशेष श्रृंगार भी किया गया। सूर्य तिलक के दौरान अयोध्या में पटाखे जलाकर भक्तों ने खुशियां मनाई। 50 LED स्क्रीन पर लाइव प्रसारण देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी। इस दौरान भक्त भाव विभोर होकर जयकारे लगाने लगे। भगवान रामलला को 56 प्रकार के भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए थे। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई देते हुए कहा कि भगवान राम प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा रहे हैं। प्रदेश में राम राज्य की अवधारणा से बिना भेदभाव शासन की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचाया जा रहा है। चित्रकूट में भी रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। यहाँ राम घाट से लेकर रघुवीर घाट तक 22 लाख दिए जलाए गए। वहीं चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर कल देर शाम तकत मिर्जापुर स्थित माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर, बलरामपुर के माँ पाटेश्वरी देवी मंदिर सहित राज्य के सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। प्रदेश में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में नर्सरी और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए तीसरे चरण की लॉटरी आज जारी की जाएगी। पहले और दूसरे चरण में 1.5 लाख से अधिक बच्चों को निजी स्कूलों में सीट आवंटित की गई है। पिछले 2 दिनों से मौसम के मिजाज में बदलाव आया है। कल प्रदेश के कई जिलों में बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई, वहीं फसलों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। आज सुबह भी कई जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से कई जिले बारिश से प्रभावित रहेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हुई असमय बारिश से हुए फसलों की क्षति की जानकारी ली और अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। किसान टोल फ्री नंबर 1-4-4-4-7 पर फसल नुकसान की तत्काल सूचना दे सकते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजर आपू राम मोहन नायडू भी रहेंगे मौजूद। पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर सरकार ने कहा कहीं भी संकट नहीं। प्रदेश में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य। केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क में की बड़ी कटौती। प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया रामनवमी का पर्व। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में किया गया रामलला का सूर्य तिलक। और पिछले 2 दिनों से बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में रुक रुक कर हुई बारिश से फसलों पर भी पड़ा प्रभाव। मुख्यमंत्री ने किसानों को मुआवजा दिलाने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।